धारी राधा माधव जय बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव जय शोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे नमो नमो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Bihari, Radha Vrindavan Bihari, Shri Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. जय श्री वामन द्वादशी की जय. जी गोस्वामी अपरेंस डे की जय. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvaita Kadadara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आप सभी का इस संध्याकालीन विशेष कक्षा में जो जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव दिन में जो आयोजित किया है उसमें सबका स्वागत है. और सर्वप्रथम मैं आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद का अभिलाषा करता हूँ कि जिस प्रकार मैं जीव गोस्वामी जी के एक उनकी महिमा गाने का एक प्रयास कर रहा हूँ और आपके आशीर्वाद से वो सफल हो जाए, यही मैं आपका याचना करता हूँ. तो अगर हम जीव गोस्वामी जी का एक प्रणाम मंत्र दिया है बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा, तो हम सर्वप्रथम उसको सभी लोग मिलकर उसका उच्चारण करने का प्रयास करेंगे 3 बार. बहुत अच्छा मंत्र है और फिर उसका जो प्रणाम मंत्र उसको हम समझने का कोशिश भी करेंगे. या संख्य पांकेन कुतर्क पाशुनाम विवर्त गर्ते न चलुप्त दीधितम शुद्धम विदाद्वाक् सुधया महेश्वरम कृष्णम सजीव प्रभुरस्तु मे गति. यसंख्य पांकेन कुतर्क पांशुना विवर्त गर्ते न च लुप्त दीरितम् शुद्धम व्यधाद वाक् सुधया महेश्वरम् कृष्णम सजीव प्रभुरस्तु मे गति. यस्सांख्य पंकेन कुतर्क पांशुना विवर्त गर्ते न च लुप्त दीरितम् शुद्धं विदाद्वाक् सुधया महेश्वरम् कृष्णं सजीवा प्रभुरस्तु मे गतिः। तो उसका हम अनुवाद भी देखेंगे। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं जीव गोस्वामी से कि वह श्री जीव गोस्वामी प्रभु मेरे आश्रय हो, जिन्होंने अपनी अमृत शिक्षाओं के द्वारा सर्वोच्च भगवान कृष्ण को शुद्ध रूप से प्रकट किया, जिनके दिव्य महिमा सांख्य गणना की दलदल भरी रेत, भ्रामक तर की धूल भरी आंधी और भ्राम की खाई से छुपी हुई थी। तो अगर हम देखेंगे तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान कृष्ण का स्वरूप का ज्ञान, ये जो मायावादी तर्क की विचार धारणा थी उससे बहुत छुपी हुई थी। जो अलग अलग हमारे हम देखते हैं भारतीय तत्वज्ञान में जो अलग अलग विचार प्रणालियाँ हुई, तो जो सांख्य विचार प्रणाली भी है जिसमें क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जो इस प्रकृति में जो अलग अलग तत्व है उनका गणना करते हैं और वो बोलते कि हाँ ये नहीं है ये नहीं है, भगवान का जो परम सत्य क्या है वो उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु वो उस सांख्य गणना के दलदल भरी रेत में जो परम सत्य सच्ची में क्या है, जो भगवान कृष्ण है उनकी जो दिव्य सेवा है, ये हम भूल जाते हैं। वैसे ही लोग तर्क देते हैं कि मतलब भगवान को प्रयास करने का, अलग अलग प्रकार से तर्क से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तर्क की जो धूल भरी आंधी बोली, इससे भी भगवान का जो खरा जो सत्य स्वरूप है वो ढक गया है। जो एक व्यक्ति है, भगवान जो एक व्यक्ति के रूप में है जो हम भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो ये और भ्रम की जो खाई बोली है विवर्त करते हैं ना, तो ये सभी जो अलग अलग जो धारणाएं थी, विचारधाराएं जो 500-600 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के उदय के पहले, उनका आविर्भाव के पहले जो बहुत दृढ़ हो गई थी, जब शंकराचार्य आए उसके बाद में, तो उसको निकालने के लिए जो जनमानस में ये जो धारणाएं थी, तो जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश था, जो गोस्वामी जो थे छठ गोस्वामी गण, उन्होंने महाप्रभु के संदेश को जो है एक वैचारिक रूप दिया, पर जो एक ग्रंथों के रूप में उनके, और उन ग्रंथों में सर्वप्रथम जो महिमा मंडी जो है अपने जीव गोस्वामी जी, उन्होंने एक अलग अलग प्रमाणों के द्वारा ये प्रस्थापित किया कि कैसे भगवान कृष्ण ये मूल स्वरूप है। तो इस प्रकार हम जीव गोस्वामी जी का भी एक आशीर्वाद प्रदान करके उनका जीवन सारांश क्या है ये थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। हमको पता है आप आगे जा सकते हैं। थोड़ा आगे ज़्यादा आगे ठीक है, बैक ओके परफेक्ट गो अहेड आगे वाला परफेक्ट ओके ठीक थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जो महाप्रभु का जो आदेश है और जिस प्रकार उन्होंने उनके जो अनुयायी थे उनको किस प्रकार उनको बल दिया, उनको किस प्रकार एक शक्ति संचरण किया, उसमें उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं। तो जैसे नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु के बारे में बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु जो है उनको क्या किया, महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था कि आप क्या करो कि हरिनाम का प्रचार करो, पवित्र भगवान पवित्र नाम का जो है प्रचार और प्रसार करो, इसके नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया था, ठीक है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जी को। फिर बाद में हम जुरूप गोस्वामी जी को जो है उनको क्या आदेश दिया था कि हम आगे देख सकते हैं कि भक्ति सेवा का जो मधुर विज्ञान है वो उन्होंने प्रकट किया, रस शास्त्र जो है रूप गोस्वामी प्रकट किया था, ठीक, उसका उन्होंने अलग अलग शास्त्रों का लिखा। और बाद में सनातन गोस्वामी को आदेश दिया था कि आप क्या प्रकट कीजिए, वैद्य जो भक्ति है और जो रागानुगा भक्ति है उनमें क्या संबंध है वो प्रस्थापित कीजिए करके, तो इसके बारे में उपदेश देने के लिए उनको बताया था। और उसके अलावा गोकुल में जो अलग अलग भगवान की लीलाएं हुई है प्रकट और अव्यक्त, तो उनके बारे में संबंध प्रकट करने के लिए उनको बताया गया था, ठीक है। और बाद में जीव गोस्वामी को क्या आदेश दिया था उन्होंने कि आप क्या करो कि जो हमारा शास्त्र में जो भगवान कृष्ण के बारे में संबंध अभिधि और प्रयोजन ये जो है इसको विस्तृत रूप से आप समझाओ। संबंध मतलब जो क्या होता है कि हम क्या है, एक जीव है और भगवान जो है हमारा नित्य स्वरूप क्या है, हम भगवान के नित्य दास है, ओके, तो ये हमारा संबंध हो गया, संबंध ज्ञान कि हम भगवान के नित्य दास है। और उसके आगे है जो है, अभी संबंध तो बहुत पता चल गया, बट बाद में क्या अभिधेय, अभी उस अभी ठीक है संबंध तो मेरे को पता है, बट अभी मेरा मेरा गोल क्या, उद्दिष्ट क्या है, प्रयोजन मतलब क्या है कि भगवान के जो हमारा उद्दिष्ट है, हमारा उद्दिष्ट क्या है कि भगवान की नित्य सेवा में लगना। तो नित्य सेवा में लगने के लिए मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा मार्ग क्या है, तो भक्ति का जो भक्तिमय सेवा का मार्ग है वो हमारा प्रयोजन है। तो जो जीव गोस्वामी है उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा से और सनातन गोस्वामी के माध्यम से उनको जो शक्ति संचरण हुआ उसमें उन्होंने ये प्रकट किया उनके शास्त्रों के द्वारा, उन्होंने जो शास्त्रों का निर्माण किया उसमें। तो आप थोड़ा आगे, तो हम थोड़ा उनका जीवन का सारांश देखेंगे। तो जैसा सभी लोगों को पता है रूप सनातन गोस्वामी पास जो है वो जो महाप्रभु के जो अनुयायी थे, पहले गोस्वामी बनने के पहले वो कौन थे, वो जो थे दबीर खास साकर मलिक करके एक बंगाल के जो नवाब थे उनके इसमें बड़े हुद्दे पे थे, जैसे वजीर और उनका एक खजिनादार जो ट्रेजरर है ऐसे रूप में थे वो। तो बट कुछ कारणवश बट फिर भी वो भले ही उस पोजीशन पे थे बट वो भगवान की भक्ति में पहले से ही दृढ़ थे। और उनके जो भाई छोटे भाई थे उनका नाम अनुपम है, श्री वल्लभ भी बोला जाता है, तो वो उनके बेटे जो थे वो जीव गोस्वामी थे। तो जब महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी पाद पर जो कृपा किया था, कब कृपा किया था, रामकेली में जब उनसे मिले थे 1513 का समय बोला जाता है उसको, तो उस टाइम पे जब रामकेली में जैसा हमें देखते हैं रामकेली में भगवान जब रूप दबीर का सागर मलिक जब उनके उनको समर्पण किए अपना महाप्रभु को, और महाप्रभु ने तब उनको रूप और सनातन सागर के नाम दिया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, और फिर बाद में उनको आदेश भी दिया कुछ सालों बाद जब कि आप वृंदावन जाके जो अलग अलग आपका आपको कार्य करना है, तो उस समय जीव गोस्वामी जी जो थे वो बहुत छोटे बालक थे 3 साल की आयु वाले, और उन्होंने महाप्रभु का उस टाइम पे दर्शन किया 3 साल की आयु में, माँ के गोद में बैठ के महाप्रभु का दर्शन किया। और जैसा हर एक बच्चे को माँ संतों के चरणों में रखते हैं वैसा महाप्रभु के चरणों में भी उनको चरण धूलि का प्राप्त हुई उनको। और तभी महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो है ये हमारे गौड़िया से इसमें बड़े एक आचार्य और गुरु करके बनेंगे करके, इनके बारे में एक उन्होंने भविष्यवाणी महाप्रभु ने उसी समय कर दी थी। तो ऐसा हुआ बाद में कि जब वो बचपन में थे तो बचपन में उनके पास ही कृष्ण और बलराम के अर्चा विग्रह थे। उनके माता पिता ने जैसे हम बचपन में छोटे बच्चों को कुछ खेलने के लिए देते आजकल छोटा कुछ खिलौने रहते, तो उस टाइम पर उनके जमाने में कृष्ण बलराम का विग्रह उनके माता पिता ने उनको दिया था, और उनका बहुत भाव से वो उसका सेवा अर्चा करते थे। और ऐसा होता था कि कभी कभी उनको सोने के लिए भी वो उनको साथ में लेके जाते थे कृष्ण बलराम को, तो उनको माँ पिता को बोलना पड़ता था अरे अभी ऐसा मत करो उनको अलग रखिए विग्रह में मंदिर में। तो ऐसा उनका जुड़ा हो गया था भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा से। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब रूप और सनातन गोस्वामी उनका सब जो जो नवाब के यहाँ पे जो कार्य करते थे वो सब छोड़ के जब महाप्रभु की सेवा में लगने के लिए सब घरदार छोड़ के चले गए, तो उनके साथ साथ उनके भाई भी गए अनुपम गोस्वामी, अनुपम जो है वो। तो जब उनके भाई गए तो उनके जो बेटे अब हम देखेंगे तो उनका लालन जो बचपन था बहुत सुनहरा गया जीव गोस्वामी का। सुनहरा क्यों, क्योंकि उनके ऐसा कुछ कमी नहीं था उनके घर में, क्योंकि उनको तो इतना जो तनख्वाह मिलता था बादशाह से तो उनके घर में तो बहुत जो चाहिए था सब कुछ मिलता था, धन संपत्ति विपुल मात्रा में था। बट जब ही अब उनके जब चाचा जब स्वयं रूप सनातन को चले गए और फिर अनुपम गोस्वामी भी उनके पिता भी चले गए जीव गोस्वामी के, तब वो छोटे आयु में सब उनकी माता और वो सब उनके जुदाई के इसमें सब आंसुए बहते थे। और जब और एक बताना था कि जब बचपन में जब जीव गोस्वामी ने महाप्रभु को देखा था तभी से उनके हृदय में महाप्रभु का जो स्वरूप है उनके हृदय में चला गया था, और वो हमेशा उनको याद करते थे महाप्रभु का चरण कमल को याद करते थे। और जब उनके पिताजी भी चले गए और चाचा वगैरह सब चले गए सब वृंदावन के लिए और महाप्रभु की सेवा के लिए, तब उनको बहुत सबका जुदाई में महसूस होता था महाप्रभु से भी और उनके जो वरिष्ठ गण रूप सनातन गोस्वामी अनुपम गोस्वामी उनसे। तो बाद में फिर उनका उनके उनको फिर अध्ययन के लिए जब बड़े हुए तो उनको अध्ययन के लिए उन्हें सीखना शुरू किया फतियाबाद में, तब रहते थे फतियाबाद करके एक जगह है तो वहाँ पे वो रहते थे, और फिर वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे जो गुरुजन थे उनसे वो शास्त्र और व्याकरण वगैरह सीखना शुरू किया। तो उनका उनका उस टाइम पे उनका प्रभुत्व देख के, उनका शास्त्रों में प्रभु और व्याकरण में और संस्कृत में उनका प्रभुत्व देख के सभी जो उनके गुरुजन थे वो सभी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि ऐसा प्रभुत्व जो है वो निश्चित ही ये कोई बड़े साधु बनेंगे भविष्य में। और बाद में ऐसा हुआ कि जब एक बार फिर उनको जब वो बलराम जी कृष्ण का, वो हमेशा नित्य कृष्ण बलराम का सेवा का उनका चिंतन करते थे और गौर निताई का भी चिंतन करते, तो एक दिन उनको स्वप्न में कृष्ण बलराम आए और फिर वो वही उन्होंने फिर से नित्य गौर सुंदर के रूप में प्रकट किए, नित्य सुंदर गौर सुंदर और कृष्ण बलराम एक ही ऐसे उन्होंने दिखाया। और उससे उस टाइम समय जब गौर सुंदर है उन्होंने फिर से भगवान उनके सिर पे चरण रखे और उनको बोले, उनके आदेश दिया कि अभी आप, मैं आपको नित्यानंद प्रभु को सौंप रहा हूँ, ऐसे बोले कि आप अभी नित्यानंद प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे, उनको आप उनके शरण में जाओ। तो जब ऐसा हुआ तो उनको बहुत हृदय में तसल्ली मिली, एक बहुत अच्छा लगा कि ठीक है बहुत ऐसा स्वप्न जब उनको प्राप्त हुआ, ऐसी अनुभूति हुई। तो उनको फिर बाद में बहुत हृदय में लग रहा था कि अभी बहुत हो गया, अभी मुझे ये सब छोड़ के मुझे भी नित्य सेवा में जाना है, एक हृदय में विरक्ति उनकी उत्पन्न हो गई। और कुछ समय बाद उनको एक वार्ता मिली कि उनके पिताश्री जो है अनुपम गोस्वामी, उन्होंने गंगा के किनारे जो है शरीर त्याग दिया है। अभी जब उनके पिताजी ने गंगा शरीर के किनारे गंगा के किनारे पर शरीर त्याग दिया तो फिर उनके जो दुख में और वृद्धि हो गई। तो फिर उनको सांत्वना देने के लिए वैष्णवगण बोले कि आप ऐसा कीजिए, आप जाइए नवद्वीप, और नवद्वीप में नित्यानंद जी प्रभु से मिलिए, तो जब उनकी शीतलधाम में आप जाएंगे तो आपका हृदय का जो दुख है वो शांत हो जाएगा। तो फिर वो उनका एक कोई यात्रियों का ग्रुप, यात्रियों का जो एक ग्रुप जा रहा था उसको मिल गए और उसके साथ वो नवद्वीप में गए। तो इधर नित्यानंद प्रभु भी जो सर्वज्ञ है उनको ही पता चला कि जीव गोस्वामी इधर नित्य आने के लिए निकले हैं नवद्वीप के लिए। उस टाइम पे वो खरदासा में थे, खरदाहा में सॉरी, तो खरदा से वो भी नवद्वीप आ गए नित्यानंद प्रभु। और जब जीव गोस्वामी वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो वातावरण देख के, मायापुर का जो वातावरण है नवद्वीप का, वो देख के पूरा एकदम भाव एकदम हृदय उनका भर गया पूरा, उसमें उस धूली में वो लुटपुट करने लगे और वहाँ की सुंदरता देख के बहुत एकदम प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने मायापुर के जाने का रास्ता पूछा नवद्वीप से, तो उनको पता चला कि जो नित्यानंद प्रभु है वो श्रीनिवास आचार्य जी के घर पे रुके हुए हैं। तो वे ये सुन के उनको बहुत आनंद हो गया कि ठीक है अभी मुझे नित्यानंद प्रभु का दर्शन होगा। तो फिर वो जल्द से जल्द उनके घर पे पहुँचे, श्रीनिवास आचार्य के घर पे, और वहाँ के घर पे पहुँचते उन्होंने दंडवत मार दिया बाहरी दरवाजे के बाहर ही। तो नित्यानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य बाहर आए और जब देखा जीव गोस्वामी है तो उनको उठा के गले लगाए और फिर उनको पूछा आप क्या श्री रूप और सनातन के एक भतीजे है, मतलब उनको तो पता ही था सर्वज्ञ है बट फिर भी उन्होंने पूछताछ किया कैसे है क्या है। और फिर बाद में जीव गोस्वामी को फिर बाकी वहाँ के जो वैष्णवगण थे वो भी सब प्रसन्न हो गए जो वहाँ पे नवद्वीप में थे, जो नित्यानंद प्रभु के जो और महाप्रभु के जो एसोसिएट थे जो संगीगण थे, तो वो भी उन्होंने भी सब कुछ अपने जीव गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। और फिर बाद में उनको उस दिन जीव गोस्वामी सॉरी नित्यानंद प्रभु का महाप्रसाद अवशेष भी उनको प्राप्त हुआ। और फिर दूसरे दिन अगले दिन उन्होंने क्या किया कि नित्यानंद प्रभु ने उनको शची माता के घर पे लेके गए। शची माता जो अभी महाप्रभु तो उस टाइम पे पुरी में थे, ठीक, तो शची माता का घर पे जब गए तो शची माता, उन्होंने देखा शची माता एक सफ़ेद वस्त्र में पहने हुए है और उनका बाल भी सफ़ेद हुए है, उनके हाथ पैर थके हुए थे एकदम पतले हुए थे, शरीर जर्जर हुआ था, बट फिर भी उनके जो दिव्य आभा थी उनका जो तेज था, क्योंकि वो हमेशा भगवान के गौर सुंदर के विचारों में डूबी हुई थी, तो आँखें बंद करके वो सोच भगवान का ध्यान कर रही थी, मतलब उनके बारे में चिंतन कर रही थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे और जब शची माता को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो उन्होंने बोला, उनके जो सेवक थे उनको बोला ईशान को, अरे श्रीपाद आए हैं कृपा करके उनका उनके पैर धोजिए। और फिर बाद में वो होने के बाद जब उन्होंने आसन ग्रहण किया नित्यानंद प्रभु ने, और तो उन्होंने फिर जीव गोस्वामी को सती माता के साथ सती माता को बताया कि ये जीव गोस्वामी है, उनके बारे में बताया हमको उनको। और सती माता ने भी बहुत प्रसन्न होकर उनके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया जीव गोस्वामी को। तो वो भी बहुत, उनका भी हृदय बहुत द्रवित हो गया कि जो भगवान की माँ है उनके, उनका आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हो रहा है। तो बाद में फिर सती माता ने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए, आज प्रसाद इधर ही ग्रहण कीजिए, मैंने गुप्त रूप से भगवान महाप्रभु को भी गौरचंद्र को भी प्रसाद खिलाया है, तो आप वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने प्रसाद वहाँ ग्रहण किया। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि फिर और कुछ दिन उन्होंने नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु के साथ बिताए जी गोस्वामी ने, और नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरा जो नवद्वीप है धाम उसका पूरा यात्रा करवाया, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, फर्स्ट नवद्वीप मंडल परिक्रमा, पहली प्रथम नवद्वीप मंडल परिक्रमा बोल सकते हैं। और वहाँ करवा के सब अलग अलग जो धाम है महाप्रभु के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सभी का उन्होंने दर्शन करवाया। और बाद में फिर अभी जब उनको इच्छा था कि अभी मुझे उन्होंने पूछा ऐसा कि अभी मैं महाप्रभु के दर्शन के लिए जाऊँ क्या पुरी में, जो को स्वामी ने पूछा था उनको कि अभी पुरी तो ज़्यादा पास में ही था ना, कि ज़्यादा यहाँ से कितना दूर जाए पड़ेगा मायापुर से जाने के लिए, और अगर नित्यानंद प्रभु बोलेंगे तो वो भी एक उदारता के एक स्वरूप बोले जाते हैं। तो फिर भी नित्यानंद प्रभु उनको क्या दे दिया, आप पूरी मत जाओ, बोले कि प्रभु कहे शीघ्र करे व्रज करे हर प्रयान तुम्हार बंशे प्रभु दिया से ही स्थान, दिया से ही स्थान। तो प्रभु बोले कि आप क्या करो, शीघ्र व्रज को प्रयाण करो, क्योंकि आपके लिए सबके लिए आपके वंश में सप्तम जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हो गए, आपको आपको प्रभु ने क्या स्थान दिया है, आपके लिए वृंदावन का स्थान दिया है। तो जो जीव गोस्वामी ने जो बचपन में जो जीव गोस्वामी इनको देखा महाप्रभु को, उसके बाद उनको महाप्रभु को देखने का ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, तो उनको महाप्रभु कभी देख नहीं सके वो, बट उन्होंने जो आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु का उन्होंने हृदयपूर्वक धारण कर लिया, ठीक है कि अभी सेवा का महत्व है। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु आप बोले कि आपको क्या करना है, वहाँ जाके आपको रूप सनातन गोस्वामी को आपको सहायक करना है, और जो सभी शास्त्र है उसका उद्घाटन करना है, उसको आपको निर्मित करना है। तो इसलिए वो भी और उसके लिए महाप्रभु भी बोले नित्यानंद प्रभु अब आपको उसके लिए जो शास्त्र का आप उद्घाटन करेंगे और फिर लोगों के सामने प्रकट करेंगे ये भक्ति शास्त्र, तो उसके लिए आपको थोड़ा तर्क वितर्क भी सीखना पड़ेगा कि कैसे बाकी जो अलग विचारधारा है उसको किस कैसे खंडन किया जाए। तो उसके लिए आप क्या किए किए बोले, आपको भी सिद्धांत शिरोमणि बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऐसे करो बोले कि आप जाइए वाराणसी, और वाराणसी में जो मधुसूदन वाचस्पति है जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्य थे, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य भी पहले अद्वैतवादी थे और जो महाप्रभु के संग मिलने के बाद भक्त बन गए थे, तो उनके फिर उन्होंने भी भक्ति का जो जो शिक्षा ये है भक्ति का जो ज्ञान है वही उनके जो शिष्य है मधुसूदन वाचस्पति उनको सिखाया था। और फिर मधुसूदन वाचस्पति ने उन्होंने जो पाठशाला खोला था वाराणसी में, वहाँ पे जीव गोस्वामी वहाँ चले गए और वहाँ पे उन्होंने 3-4 साल शिक्षा लिया। और बाद में फिर आगे जाके वो व्रज के लिए गए, व्रज के लिए प्रयाण किए। तो व्रज में जो है उनका आगमन 1533 के अराउंड हुआ, और फिर वहाँ पे आगमन होने के बाद उनका जो है रूप और सनातन गोस्वामी के साथ उनका जो भेंट हुआ, तो सनातन गोस्वामी ने उनको क्या किया, रूप गोस्वामी के हाथों में सौंपा और बोले कि आप इनसे दीक्षा लीजिए। तो उन्होंने रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की है, और फिर रूप गोस्वामी ने उनको भागवतम का शिक्षा भी दिया, भागवतम के बारे में उनको सिखाया श्रीमद् भागवतम का। और एक बार सनातन गोस्वामी के सपने में राजा दामोदर जी आए, और उन्होंने भी उनको बोला कि आप क्या कीजिए कि आप विग्रह का निर्माण कीजिए मेरे, और जीव गोस्वामी को सौंपिए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने राजा दामोदर जी का सेवा भी जीव गोस्वामी को प्रदान किया। तो इस प्रकार वो वृंदावन में जब रह रहे थे आगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि रूप और सनातन की सेवा में वो दृढ़ता से संलग्न हो गए, और वहाँ पे जो है वो किस प्रकार सेवा किए, जैसे अलग अलग किताबों का संशोधन किया उन्होंने और टिप्पणी किया, जैसे जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी लिखते थे तो वो उस जो लिखने के बाद वो देखते थे, जैसे हम बोले ना प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग मतलब बराबर है कि नहीं, कुछ चेक करो, स्पेलिंग वगैरह चेक करो बराबर है कि नहीं, तो उस टाइप में उन्होंने प्रूफ जो है संशोधन किया किताबों का, और उसमें भी उन्होंने टिप्पणियाँ लिखी, टीकाएँ लिखी। जैसा भक्ति रसामृत सिंधु पर उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं कि जैसे एक सनातन गोस्वामी ने जो वैष्णव तुष्णी का संकलन किया था, जो दशम स्कंद पर आधारित है बुक का निर्माण लिखा था, तो उस पर उन्होंने भी जब जीव गोस्वामी को दिया संशोधन के लिए, तो जीव गोस्वामी ने वो संशोधन किया और उसमें फिर उन्होंने फिर और एक लघु वैष्णव तुष्णी नामक एक भाष्य भी बनाया उस पर लिखा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से उन्होंने अलग अलग किताबों का संशोधन किया था, उस पर टिप्पणी भी ली, पर उसके अलावा भले ही वो शास्त्र से बहुत उच्च शिक्षित थे और बहुत पंडित थे, फिर भी बहुत विनम्रता से बहुत अलग अलग सेवाएं करते थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। जैसे उनके लिए स्नान के लिए पानी लेके आना, या फिर उनका भोजन पकाना, रूप गोस्वामी का सेवा में तो भोजन पकाना उनके लिए, या फिर उनके लिए जो किताबें उनको जो शास्त्रों का लिखा लेखन करना है उसके लिए, जो उस समय तो ज़्यादा कागज़ मिलता नहीं था तो पत्तों को जो है पाम लीफ जो रहते हैं पाम के पत्तों को वो काट काट के फिर उसको सुखा के वगैरह अलग अलग प्रकार से उसका पेज बनाते थे, उसके पत्र बनाते थे। और तो ऐसा भी जो बनाने का जो साहित्य जो है ग्रंथ निर्माण का साहित्य है वो भी पांडुलिपियों को बनाने का वो भी वो करते थे। और जैसा अलग अलग आश्रम की सफाई हो गई, पूजा हो गई, तो ये सभी कार्य उन्होंने विनम्रतापूर्वक किए सभी, भले वो बड़े शास्त्र के पंडित थे। ठीक है, तो उसके बाद में तो एक बार एक ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक बड़े पंडित आ गए, उनका नाम था रूप नारायण। और वो जब आए तो वो बड़े सब अलग अलग शहरों से आए थे, वो अलग अलग गांव में जब, और अलग अलग शहरों में जो प्रसिद्ध थे उस समय पांडित्य के लिए, वहाँ पे हर एक सब पंडितों को हरा के आते थे वो, क्योंकि वो शास्त्रों में निपुण थे। तो उनका एक ही था, उनको जो अहंकार था कि मैं बड़ा सबसे बड़ा पंडित हूँ। तो सब तो वो क्या हुए, जब वहाँ वृंदावन में, तो उनको रूपर को सनातन गोस्वामी के बारे में पता चला, और वो रूपर सनातन गोस्वामी के पास गए और उनको बोलिए उनके उनसे उनको क्या बोलते चैलेंज दिया कि आप क्या करो मेरे साथ, हमारे साथ शास्त्र चर्चा करो, या फिर अगर आपको नहीं करना है तो आप लिख के दे दो कि आप हार गए। तो जी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने लिख के दे दिया ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे मूर्ख पंडित से व्यर्थ शास्त्र चर्चा करके समय व्यर्थ गमाना कुछ उचित नहीं है, तो इसलिए उन्होंने लिख के दिया कि हाँ हम हार गए करके। तो वो बहुत गर्व से उसने वो कागज लिए और दिखा रहा सबको। तो किसने उनको बोला कि अच्छा उन्होंने विनम्रता से आपको लिख के दिया, मगर आपको सच्ची में अगर बड़ा किसी को हराना है तो आप जीव गोस्वामी को हराइए, कि वो सबसे वो बहुत पंडित है, उनका पंडित बहुत है, तो अगर आप उनको हराएंगे तो हम मान जाएंगे कि आप बड़े पंडित हैं। तो बोले ठीक है। तो फिर वो जीव गोस्वामी के पास गए, उनको बोले कि हमने सुना है कि आप बहुत बड़े पंडित है, तो फिर हमारे साथ शास्त्र चर्चा कीजिए, देखिए मैंने आपके जो चाचा है रूपर सनातन उनको हरा दिया। तो जीव गोस्वामी बोले ठीक है, आप दिखाइए पेपर, वो जो आपने जो पत्र है जो हरा दिया उन्होंने लिख के दिया। तो उन्होंने पत्र जब उनके हाथ में दिया तो जीव गोस्वामी ने उसको फाड़ दिया और बोले कि देखिए जो रूपर सनातन गोस्वामी पाद है वो बहुत पंडित है और वो बहुत विनम्र है, तो विनम्रता से उन्होंने आपको ये लिख के दिया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप पंडित है बड़े और वो हार गए। अगर मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ, अगर आप मुझे हरा देंगे तो देखते हैं हम। तो फिर वो शास्त्र चर्चा के लिए तैयार हो गए, तो शास्त्र चर्चा उनमें हुआ, और शास्त्र चर्चा होने के बाद क्या हुआ कि जो अपने रूप नारायण है वो फिर थोड़ी देर में कुछ दिनों में समझ गए शास्त्र चर्चा में थोड़ी देर में कि भाई इनसे हमारा पंगा लेने में कोई ये नहीं है, और उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। ठीक है, उनका गर्व जो था वो निकल गया, उनको समझ गया कि भाई इनका अगर देखिए अगर ये रूपर सनातन गोस्वामी के शिष्य ही जो इनके है वही इतने बड़े पंडित है तो वो रूपर सनातन गोस्वामी कितने बड़े पंडित रहेंगे। तो जब उनका भ्रम दूर हो गया वो उनका और उन्होंने हार मान लिया, तो जीव गोस्वामी ने उनको कहा कि देखिए अगर आप मैंने आपको पराजित नहीं करता था और आपको ऐसा महिमा मंडित नहीं किया होता तो आपको समझ नहीं पाता था कि कृपा सनातन गोस्वामी का महिमा कितना बड़ा है। तो आप क्या कि आपको अगर वास्तविक भले चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, उनका शरण जाइए और उनको विनम्र क्षमा याचना उनके लिए उनको प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपने उनका आपको उनका जो सामर्थ्य न समझ के आपने उनका घोर अपमान किया है, तो आप उनसे प्रार्थना क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। तो बाद में जब रूप सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को जब उनको पता चला इसके बारे में तो वो बहुत क्रोधित हो गए, और उस टाइम पे भी उस समय भी उन्होंने जीव गोस्वामी को शिक्षा दिया था कि आप क्या करो, आप में बहुत अभिमान है शास्त्र का, क्योंकि अभी गुरु का ये रहता है कि गुरु सदैव शिष्य को अनुशासन देना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने अनुशासन दिया कि ठीक है आप कुछ दिन वृंदावन के बाहर रहो और जब तक आपका अभिमान कम नहीं होता तब तक अंदर नहीं आए। और ऐसा और एक प्रसंग में भी हुआ था, दूसरे प्रसंग में क्या हुआ था कि एक बार वल्लभ भट्ट, जिनको वल्लभाचार्य के नाम से भी पहचानते बहुत लोग, ओ बी एल कपूर जो है प्रोपा भक्तिशाली ठाकुर के जो शिष्य है उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि वल्लभ भट्ट जी जो जिनको वल्लभाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी भगवान के बड़े भक्त थे और वृंदावन में रहते थे उस समय, तो उनका भी मुलाकात रूप गोस्वामी से, अच्छे दोस्त थे, तो एक बार आए और उस समय रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु पे उसका लेखन कर रहे थे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने एक श्लोक लिखा था जो ऐसा था कि मुक्ति मुक्ति पिशाची यावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यत्र कथम अभ्युदय भवेत। तो उसमें लिखा था कि भुक्ति मुक्ति पिशाची, कि भुक्ति और मुक्ति जो भौतिक इच्छाएं है वो या फिर मुक्ति की इच्छा भी, ये कैसे पिछा की पिछाजी के रूप जैसी है, और जब तक ये हमारे हृदय में है तब तक भक्ति का सुख जो है कथम अभ्युदय भवेत, तो कैसे हमारे हृदय में निर्माण होगा, निर्माण होना बहुत मुश्किल है जब तक हमारे हृदय में यह भुक्ति और मुक्ति की आकांक्षा है, एक पिशाची रूपी आकांक्षा है। तो जब ये श्लोक वल्लभ भट्ट जी ने सुना तो उनको लगा ठीक है आप भुक्ति को पिशाची बोल रहे ठीक है, बट आप मुक्ति को भी क्यों पिशाची बोल रहे, कि बहुत लोग मुक्ति को भी चाहते हैं जो भगवान की जो यह है, तो मुक्ति को पिशाची बोलना योग्य नहीं है, आप ऐसा बोल सकते कि व्यापनोति हृदय यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहा, ऐसा बोलिए। थोड़ा उन्होंने वही पंडित थे तो उन्होंने थोड़ा सजेशन दिया कि आप ऐसा जो है उसमें थोड़ा चेंज कीजिए, उसमें थोड़ा करेक्शन कीजिए। तो फिर उस जीव गोस्वामी उस समय बाजू में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा क्या बताया है, तो क्या फिर उनको क्या वो अपने गुरु है रूप गोस्वामी उनके लिए, तो उनको लगा कि गुरु का अपमान है, उन्होंने लिखा तो ये तो बराबर ही रहेगा, बराबर ही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब ये वल्लभ भट्ट निकल रहे थे रूप गोस्वामी ने, तो उन्होंने तो शांति से स्वीकार कर लिया ठीक है, कि वो विनम्र भाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया आप जो बोल रहे हैं ठीक है, ये जो लाइन है मैं चेंज करता हूँ। बट जीव गोस्वामी जो है वो उनके पीछे गए, वल्लभ भट्ट जी के पीछे, और फिर उनको समझाया कि किस प्रकार जो यहाँ पे इस संदर्भ में वो मुक्ति को पिशाची नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं कि मुक्ति की जो इच्छा है कामना जो है उसको पिशाची कहा है, तो मुक्ति को कहीं पिशाची नहीं कहा है। जैसे बोलते कि हमारे हृदय में अगर कोई भी कामना आती है, भौतिक कामना कोई भी है, तो उससे बोलते हैं कि तीन चीज़ों होती है, जैसा भक्ति रस का उसमें नाश होता है, मन विचलित हो जाता है, या फिर और चिंता और परेशानी आ जाती है। तो ये जो है इच्छा है, ये भौतिक इच्छा या मुक्ति का भी इच्छा, ये कामना, इसको पिशाची कहा गया है, ना कि मुक्ति को पिशाची कहा है। तो वल्लभ भट्ट जी भी उनकी विद्वत्ता देख के बहुत अचंभित हो गए, और वो भी बड़े उदार हृदय के थे तो उन्होंने भी स्वीकार किया, भले ये नवयुग थे, ये उनको बड़े पंडित थे तो उनको तो ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको प्रत्युत्तर दिया, वो भी उदारता से उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है ये बराबर बोल रहे हैं। और फिर वो स्नान करके जब आए यमुना से तो फिर रूप गोस्वामी जी को बोले कि आपका जो भतीजा है वो जो आपके जो है लड़का कौन है, वो बहुत बहुत अच्छा पंडित है, तो उन्होंने बोला मेरा भतीजा है वगैरह उन्हें बताया, तो उन्होंने बताया जो सब पूरा वृत्तांत था उन्होंने कथन किया। तो फिर जब वल्लभ भट्ट जी चले गए तो रूप गोस्वामी जी ने उनको बुलाया और बोला कि आप कैसे ऐसे हिम्मत कर सकते हैं कि इतने बड़े जो भक्त है विद्वान है उनसे आप उल्टा उत्तर देकर उनको आप सिखा रहे हैं उनको, तो ये सिखाना जो आपके हृदय में जो क्रोध है उसके वजह से हुआ है उत्पन्न। और जब तक क्रोध है हृदय में तब तक इस वृंदावन में जब तक कोई रह नहीं सकता। तो ऐसा करो आप वृंदावन से चले जाओ। तो देखिए अभी जीव गोस्वामी जी भी है कितना विनम्रता से ये आदेश को या अनुशासन को स्वीकार किए। ऐसा नहीं कि कोई आजकल कोई अगर हम कोई हमें बोलेगा कोई ऐसा अनुशासन करेगा तो बोलेंगे चलो छोड़ो इधर नहीं दूसरी तरफ चले जाएंगे, बट वो ऐसा नहीं, वो उस अनुशासन को स्वीकार किए। और फिर जाके बहुत समय उन्होंने गंगा के किनारे बोला जाए मगरमच्छ का कुछ चेत था उधर बिताए, वहीं बहुत बहुत अनुशासन किए और दृढ़ भजन में लग गए और फिर उनकी अवस्था बहुत कृश हो गई। तो बहुत दुबले पतले हो गए वो अनशन के वजह से। तो फिर सनातन गोस्वामी को एक बार उनको पता चला और वो उनकी अवस्था देखे तो फिर वो आए रूप गोस्वामी के पास और उनको बोले कि आपका कैसे चल रहा है। तो बोले आपका भक्ति रसामृत का लेखन कैसे चल रहा है। बोले हाँ चल रहा है बट थोड़ा धीमे गति से चल रहा है क्योंकि अभी जीव नहीं है उसके जैसा पंडित इतना जो अच्छा सेवक था वो रहता था तो और जल्दी होता था। तो उन्होंने बोले कि देखिए बोले आपने सभी आप जीव को दया नहीं कर रहे तो आप करोगे आप क्या जीव को दया दिखाइए जो महाप्रभु का आदेश है आप उसको पालन नहीं कर रहे आप उसको पालन कीजिए। मतलब उनको एक 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 उन्होंने ऐसा अनुरोध किया कि जीव गोस्वामी की तरफ से अनुरोध किया कि आप अभी उसका अनुशासन बहुत हो गया अभी आप कृपा करके फिर से उसका अवलंबन कीजिए उसको आपकी सेवा में ले लीजिए। तो फिर रूप गोस्वामी भी जो है उन्होंने भी जीव गोस्वामी का वो भी बहुत दिनों से उनका राह देख रहे थे तो क्योंकि गुरु को अनुशासन करना ये उनका कर्तव्य है इसलिए उन्होंने किया था। तो हमको इसमें ऐसे देखना नहीं चाहिए कि इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि भाई रूप गोस्वामी गलत थे या जीव गोस्वामी गलत थे। ये क्या है भगवान की एक लीला के रूप में हमको समझना चाहिए। और जैसा इसमें रूप गोस्वामी का विनम्रता भी दिखती है कि कैसे वो विनम्र भाव से देख रहे हैं कि मेरे भी इसमें कुछ गलती हो सकती है मैं लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं तो उनका ही विनम्र भाव था। और जीव गोस्वामी भी कि उनके भी गुरुनिष्ठा हम देख सकते हैं भले इतना उनको दो बार अनुशासन किया गया फिर भी वो ऐसा नहीं कि गुरु छोड़ के चले गए वृंदावन छोड़ के चले गए नहीं। और वल्लभ भट्ट जी का भी उदार हृदय भी हम देख सकते हैं इसके इस स्थिति में और बाद में जीव गोस्वामी की सहनशीलता देख सकते किस प्रकार उन्होंने ये पूरा अनुशासन जो मिला था वो सहनशीलता से उसको स्वीकार किया। तो ये जो उदाहरण है इसको एक अपने भक्ति रक्षक सिद्धर स्वामी महाराज उनका एक आर्टिकल हार्मोनिस्ट में 1956 वाला तो उसमें जो भक्ति सदन सरोज ठाकुर के एक वरिष्ठ शिष्य गए संन्यास शिष्य तो उन्होंने अच्छा एक उसको एक उदाहरण दिया है कि ये किस प्रकार है जीव गोस्वामी का जो भाव था उनके गुरु को प्रति जो समर्पित भाव था और गुरु के प्रति जो अपराध है उसको सहन नहीं करते थे। तो जैसे उन्होंने कैसा उदाहरण दिया कि जैसे अगर किसी घर पे कोई डकैत आक्रमण करते हैं और घर का मालक जो है वो चाबी दे देता है डकैतों को और डकैत जो है फिर राजकोष में प्रवेश कर देते हैं और फिर वहाँ पे गार्ड खड़ा रहता है और गार्ड बोलते हैं चाबी मुझे दो मुझे देखने दो चाबी। तो फिर वो चाबी गार्ड ले लेता है और फिर वो बोलता है कि पहले भी मुझे हरा दो फिर आपको चाबी मिलेगा फिर आप राजकोष में प्रवेश कर सकते हैं। और तत्पश्चात फिर एक बड़ी तीव्र लड़ाई में वो उनको हरा देता है डकैतों को और अपने स्वामी के सम्मान का और धन की भी रक्षा करता है। तो ये इस प्रकार है हमको ऐसे समझना चाहिए कि किस प्रकार जीव गोस्वामी ने जो अपने गुरु का सम्मान की रक्षा की है और जो इसलिए जैसा रूपनारायण के जो उदाहरण है उनके इसमें भी और वल्लभ भट्ट की जी के उनकी कथा में भी जैसे उन्होंने गुरु का सम्मान को महत्व दिया था। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जब स्वरूप सनातन गोस्वामी पास जब इस भगवतधाम चले गए तो उसके बाद जो नेतृत्व के धुरा जी आए थे गौड़ी संप्रदाय की वैष्णव संप्रदाय की वो जीव गोस्वामी जी के कंधों पे आ गए थे और उसमें फिर उन्होंने अलग अलग शास्त्रों की रचना की 400,000 श्लोक उनको बोला जाता है उन्होंने इतना लिखा कि 400,000 श्लोक लिए उसमें से बहुत से ग्रंथ अभी नहीं है बट फिर भी बहुत से ग्रंथ भगवान की कृपा से अभी भी है। तो 400,000 श्लोक उन्होंने लिखे थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि कोई एक विवाद चला था राजपूत में कि यमुना श्रेष्ठ है या गंगा श्रेष्ठ है। तो फिर उन्होंने वहाँ विवाद में जाके एक प्रस्थापित किया कि किस प्रकार यमुना जी जो है, गंगा जी जो है वो भगवान के चरणों से आती है, ठीक है, बट यमुना जी जो है वो भगवान की पत्नी है, तो इसलिए यमुना जी जो है वो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार उन्होंने वो यमुना जी का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादित करने के बाद फिर वहाँ पे वो राजपूत राजा जो सब लोग प्रसन्न हो गए, और जो सम्राट उद्भर बादशाह वो भी प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने बोला कि हम प्रसन्न है, आपको आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो उस समय वो शास्त्र का लिखान कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मुझे कागज दीजिए। उस समय कागज बनता नहीं था, जो था वो पाम के पत्तों का वो उनको प्रयोग करना पड़ता था लिखने के लिए। तो कागज जो था वो शासकीय कार्यों के लिए जो बड़े बड़े बादशाहों को यूज़ करते थे, तो उनको फिर वो कागज मिला। फिर एक बार ऐसा भी एक ये कि अकबर ने उनको एक वृंदावन इंस्टीट्यूट जो है अपना मायापुर, वहाँ पे एक ये भी है पत्र की वृंद अकबर ने उनको, बादशाह ने उनको एक गोविंद देव के लिए जीव गोस्वामी के नाम पे जमीन दिया था। गोविंद देव जो मंदिर है वृंदावन में बना हुआ, तो ऐसे से उन्होंने उनके मतलब उन्होंने जो है क्या किया कि राजपूत और मुगल से गठबंधन करके वृंदावन के लिए, वृंदावन के मंदिरों के लिए अच्छी योजना की, उसके जमीन लिया और अच्छा उनके साथ संग जो एक गठबंधन करके। और फिर एक बार जो थे ये गोस्वामी लोगों से प्रसन्न होके, जीव गोस्वामी इनसे प्रसन्न होके मुगल शासक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आदेश दिया कि वृंदावन के जो पूरा क्षेत्र है उसमें किसी कोई भी पशु हत्या नहीं होगी, किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा। तो जो शिकार पे उस पर बंदी पाबंदी लगी, उधर शिकार जो बंगाली लोग करते थे उसको भी पाबंदी लगा दिया, किसी भी पशु का हत्या नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार वैष्णव की, उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग जो भी नए जो वैष्णव वहाँ पे आ रहे थे, जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर, फिर और अपने जो श्रीनिवास आचार्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य, और जो श्यामानंद पंडित है जो पहले उनका नाम था दुखी कृष्णदास, जो अपने हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य थे और जिनको राधा रानी का कृपा प्राप्त हुआ था, राधा श्याम सुंदर मंदिर के बारे में हम जानते हैं। तो ये तीनों जब थे वो जीव गोस्वामी के पाठशाला में आ गए थे तीनों, और ये तीनों मित्र, और वहाँ पे उनके पाठशाला में शिक्षा ग्रहण किए, जो सभी रूप सनातन गोस्वामी जो अलग अलग ग्रंथों का रचना किया उसका पूरा शिक्षा ये जीव गोस्वामी से लिए। और फिर उसका जीव गोस्वामी के देखिए उनका कितना दूरदृष्टि था, कितना विजन था, जैसा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भविष्य में देखिए कि किस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व लगेगा, तो उसने इसलिए उन्होंने ये तीनों से इसकी प्रतिलिपियाँ बनवा के ली, ये तीनों जो अलग अलग ग्रंथ थे गोस्वामी ग्रंथों का, और प्रतिलिपियाँ बनवा के फिर वो सभी ग्रंथ जो है उन्होंने बंगाल भेजा, और बंगाल में प्रचार के लिए इन तीनों को आदेश दिया, प्रचार में उनको नियुक्त किया है तीनों को। तो ये तीन लोग जो थे पहले जो शास्त्र का जो वितरण करने वाले पहले लोग थे, फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल सकते हैं हम ऐसे। तो फिर बाद में उन्होंने उधर बंगाल में प्रचार शुरू किया, और बाद में फिर एक बार माँ जानवा जो वृंदावन में आई थी दर्शन के लिए, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, तो जब 1576 में आई थी, ये खेतरुत्सव के बाद का समय है, खेतरुत्सव जो नरोत्तम दास ठाकुर ने किया था जब खेतरु में जाने के बाद में बहुत सालों बाद। तो उसके बाद में जानवा माई जब वृंदावन आई, तो उन्होंने जैसे नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल परिक्रमा करवाई, वैसे जीव गोस्वामी ने जानवा माता जी को वृंदावन का परिक्रमा करवाया, वृंदावन मंडल परिक्रमा। और बाद में एक और एक ये भी उल्लेख है कि कैसे उन्होंने 1608 में एक वसीयत भी लिखी, जिसमें सभी अपने जो मंदिर वगैरह है उसको किस प्रकार से उसको संभाला जाए। इससे हम देख सकते हैं वो कैसे एक, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ भजन में ही डूबे थे, उनका पूरा प्लानिंग भी था कि कैसे ये सभी जो चीज़ें हैं उसको किसे उसको संभालित, जो हमारे भविष्य में जो भक्त बनेंगे उनके लिए किस प्रकार इसको संवर्धित और संरक्षित किया जाए। तो ये हम जीव गोस्वामी जी के थोड़ा गुणों को हम एक सारांश में देख सकते हैं कि कैसे वो बुद्धिमान थे, बहुत शास्त्र में पंडित थे, और बाद में प्रयत्नशील भी थे शास्त्रों का समझने के लिए। जब बचपन से जो शास्त्रों को सीखे रूप गोस्वामी के अंदर साथ के वाराणसी में भी उन्होंने अध्ययन किया, तो हमें भी ऐसा अध्ययनशील उनके साथ उनका से उदाहरण लेके थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, प्रभुपाद जी के और बाकी भी जो गोस्वामी ग्रंथ हैं। फिर उनमें बहुत विनम्रता थी, हम देखते हैं जैसे जिन्होंने उनको अनुशासन मिला तो बहुत विनम्रतापूर्वक उन्होंने स्वीकार किया, और उनका बहुत उत्साह था भजन के प्रति हो गया, या फिर शास्त्र चर्चा के प्रति भी, या फिर उत्सव के आयोजन के प्रति भी उनका बहुत अच्छा उत्साह था, वैष्णव सेवा में वो प्रवीण थे, जैसे भक्ति श्रीधर महाराज जी बोलते हैं कि कैसे वो उन्होंने एक 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 उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार एक अभिमानहीन आदरणीय और समर्पित सेवक रहना चाहिए। जो सेवक है, जो सेवा में लगेगा, उसको किसी का भी अभिमान नहीं रहना चाहिए और एक समर्पण की भावना से रहना चाहिए। तो ऐसा रहेगा सेवक तो उसको हमेशा आदरणीय भी रहेगा, वो आदर के पात्र रहेगा। तो ऐसा ऐसे सेवक की उन्होंने एक स्थापना हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और बाद में उस सहनशीलता के बारे में हमने उनके सुना, कैसे वो अनुशासन को सहन किए। और निर्वैर, निर्वैर कैसे बोल सकते हैं कि कैसे है कि देखिए उन्होंने जैसे गठबंधन स्थापित किया, अभी उस समय जो शासन था वो ऐसा अनुकूल शासन नहीं था, प्रतिकूल शासन था, मुगलों का शासन था, पर फिर भी उन्होंने कैसे वो जैसे बोलते हैं ना, जैसे गोस्वामी के बारे में आता है कि वो उनके धीरे अधीरे जनप्रिय बोलते हैं ना कि अधीर लोगों के भी वो प्रिय थे, जो जो लोग है जो जो भक्तों से द्वेष करते या लोगों से द्वेष करते या लोगों को तकलीफ देते, ऐसे लोगों से भी वो ऐसे लोगों भी वो प्रिय थे। तो ऐसे ही जो अभी ये अलग अलग शासक हम देखते हैं, मुगल शासक थे, वो भी उनके साथ अच्छे संबंध थे, तो उनके कोई वैरी नहीं था, ठीक है। और बाद में उनकी रणनीतिक योजना भी देखते हैं, जो हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रणनीतिक योजना कि किस प्रकार उन्होंने प्लानिंग किया कि ये जो पहली जो बैच है जो नरोत्तमदास ठाकुर, श्यामानंद, तो इनको श्रीनिवास आचार्य, तो उनको किसी प्रकार बंगाल भेज के प्रचार का शुरुआत किया जाए, तो ये भी उन्होंने प्लानिंग बराबर किया, किताबों को भेज के, किताबों का एक प्रतिलिपि बनवा के। और ऐसे ज्ञान, अनुमति और वैराग्य से परिपूर्ण कृष्ण के प्रति जो प्रेमपूर्ण भक्ति का अवधारणा है, जो जो भाव है, उसका उन्होंने संरक्षण किया। संरक्षण किस प्रकार किया कि ग्रंथों का रचना करके उन्होंने प्रतिपादित किया कि भगवान कृष्ण ही कैसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हम तो एक सारांश में देखेंगे आगे, एक एक थोड़ा एक संदर्भ के बारे में हम देखेंगे उनका सारांश में, तो उसका एक थोड़ा सा पार्श्व भी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल नहीं है बट समझने के लिए एक आपको एक महत्वपूर्ण है। जैसा परम को बोला जाता है सच्चा ज्ञान, जैसा कि अगर हम बोलेंगे डोरी क्या है, अगर हम किसी को डोरी दिखेगा रास्ते में, कोई बड़ा डोर पड़ा है, तो कोई कोई समझ सकता है इसको सर्प है क्या, पर सच्चा ज्ञान क्या कि डोरी है, ये वो डोरी डोरी है, वो सर्प नहीं है, सांप नहीं है वो। फिर उसी प्रकार जो परम सत्य है, परम सत्य का जो उच्चतम आविष्कार है वो क्या है, वो भगवान की एक व्यक्तिगत अनुभूति है, व्यक्तित्व है वो, ऐसा ब्रह्मज्योति ये भगवान का जो परम सत्य का आविष्कृत परमोच्च आविष्कृति नहीं है। तो उसी प्रकार अपरम मतलब झूठा ज्ञान, तो जैसे डोरी को सर्प समझ लेना, ये झूठा ज्ञान हो गया। तो वैसे ब्रह्मन अनुभूति जो है उसको परम सत्य समझ लेना, ये परम उच्च आवश्यकता समझ लेना परम सत्य की, ये एक झूठा ज्ञान हो गया। फिर प्रमेय मतलब क्या, ज्ञान का विषय, तो इस संबंध में वो क्या ज्ञान का विषय क्या है, परम सत्य क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रमत्त मतलब जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, मतलब जीव, हम सब लोग जो जीव है। और प्रमाण मतलब सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का साधन, जिसको अलग अलग प्रकार से बोला जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, या फिर आप्तोपदेश। आप्तोपदेश मतलब शास्त्रों का आधार, शास्त्रों का और साधुओं का आधार और युक्ति। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट जो लास्ट में लिखा है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त करने साधनों के अलावा, जो प्रमाण है उसके अलावा, हम जो ज्ञान का विषय है उसको हम समझ नहीं सकते, वो अगोचर रहेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, प्रमाण मतलब क्या, तो जीव गोस्वामी जी ने क्या किया कि प्रमाणों के द्वारा ये स्थापित किया कि कृष्ण जो है वो परम उच्च भगवान है। तो हम आगे देखते हैं कि आप आगे जाएंगे, तो जो उन्होंने जो संदर्भ लिखा, षट संदर्भ जो बोला जाता है, तो षट संदर्भ को भागवत संदर्भ भी बोला जाता है। तो उसमें उन्होंने क्या स्थापना किया कि भगवान का एक व्यापक और सर्व संपूर्ण भागवतम का एक जो है पूर्ण विश्लेषण उन्होंने उसमें लिखा, जो श्रीमद् भागवतम है उसका उन्होंने विश्लेषण किया। और उसमें से उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला है कि परम सत्य की परमोच्च आविष्कृति जो है एक व्यक्तिगत भगवान है। व्यक्तिगत भगवान कैसे है, तो ये उन्होंने आगे षट संदर्भों में बताया। तो उसमें है तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। तो उसमें तत्व संदर्भ में भी दो प्रकार है, एक प्रमाण और प्रमेय। तो प्रमेय संदर्भ में उन्होंने क्या बोला, क्या 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 उन्होंने क्या प्रस्तावित किया कि कैसे प्रमाणों द्वारा हम व्यक्तित्ववादी पाठशाला, मतलब जो व्यक्तित्ववादी विचारधारा है उसका, उसको उन्होंने निर्धारित किया कि प्रमाण किस प्रकार उसके किस प्रकार स्थापना दर्शाते हैं कि जो परम सत्य एक व्यक्ति के रूप में है, और उसमें उन्होंने क्या क्या प्रश्नों का उत्तर दिया कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है और किस प्रकार उस साधनों के समर्थन में हम क्या प्रमाण दे सकते हैं। तो ये उन्होंने प्रमाण संदर्भ में बताया। प्रमेय में उन्होंने दिखाया कि ज्ञान द्वारा साकार करने वाली वस्तु की व्याख्या क्या है, ज्ञान द्वारा हम क्या साकार करने वाले हैं। तो जो परम सत्य जो है भगवान और उसकी भक्ति में सेवा है, वो हमको जानना है जो परम सत्य है। फिर भगवत संदर्भ में उन्होंने क्या बताया, भगवत संदर्भ में उन्होंने बताया कि भगवान फिर उनका निवास धाम कैसा है और उनके कौन क्या सहयोगी कौन है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। और उन्होंने फिर वहाँ निर्णायक प्रमाण के साथ ये प्रदर्शित किया है कि भगवान जो है एक भगवान ये यही उनका जो परम सत्य का पूर्ण वास्तविक स्वरूप है। और वही अलग जो अभिव्यक्ति है, जैसे हम बोलते ना वदंदिता तत्विदस तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भागवतम में आता है कि भगवान जो परम सत्य है वो तीन प्रकार से अनुभूत किया जाता है। एक बोलते हैं कि जो ब्रह्मन स्वरूप है भगवान का जो सर्वत्र व्याप्त है, दूसरा है परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में है, और तीसरा है कि जिस कैसे व्यक्ति के रूप में भगवान भी है। एक जस्ट 5 मिनट में थोड़ा खत्म सारांश में लेता हूँ, फास्ट समय थोड़ा समाप्ति की नोटिस आई है। तो एक तो बाद में परमात्मा संदर्भ में उन्होंने दिया कि कैसे जो भगवान की ये तीन अभिव्यक्ता है, जब हमने बोली अभी परमात्मा ब्रह्मन और भगवान किस प्रकार वो व्यक्ति होती है, और कैसे परमात्मा रूप में भगवान सबसे हृदय में जुड़े हुए और भगवान की माया शक्ति का भी उसमें वर्णन है। और बाद में कृष्ण संदर्भ में उन्होंने बोला, उन्होंने स्थापित किया कि कृष्ण भगवान ही भगवान का मूल रूप है, और बता दें कि कैसे प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा के द्वारा सेवा का जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, और सॉरी और एक भक्ति संदर्भ में उन्होंने बोला कि कैसे भक्ति मार्ग को ईश्वर का प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है वो भक्ति मार्ग ही है, भगवान ईश्वर का प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है किस प्रकार भक्ति मार्ग यही एक है, वे उन्होंने स्थापित किया। और जो आखिरी में प्रति संदर्भ है उसमें उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रेम भक्ति या ईश्वर का जो शुद्ध प्रेम है उसके बारे में उन्होंने भक्तिमय सेवा का उसका विश्लेषण किया है उसमें, और उन्होंने यहाँ स्थापित किया कि वह यही प्रेममय प्रेमा भक्ति जो है यही सर्वी जीवों के लिए प्राणियों के लिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो ये संदर्भ जो है ये एक सारांश में है संदर्भों में क्या है। तो ये एक संदर्भ का एक तत्व संदर्भ में एक श्लोक है जिसमें मंगलाचरण है, उसमें एक भगवान कृष्ण को एक प्रार्थना की गई, तो एक जस्ट हम देख लेंगे उसका एक भाषांतरण। तो उसमें बोलते हैं कि शुद्धाद्य उसका प्रथम लाइन में जैसा आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, नीचे का व्यक्ति जो है ब्रह्मन स्थिति में स्थित है, ब्रह्मन रियलाइजेशन में, ब्रह्मन अनुभूति में, दूसरा व्यक्ति जो है वो हृदय में परमात्मा का दर्शन कर रहा है, और भगवान सच्चा स्वरूप जो है वो क्या है व्यक्ति के रूप में भगवान उनके धाम में है, तो उनके साथ भक्त उनका अनुभूति ले रहा है प्रत्यक्ष रूप में। तो ये यहाँ पे जो श्लोक में क्या जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि शुद्ध आध्यात्म के अस्तित्व की अमूर्त विशेषता में सर्वोच्च परम सत्य को कभी कभी वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मन के नाम से जाना जाता है। तो पहले लाइन में जो श्लोक है उन्होंने बोला कि ब्रह्मन स्थिति क्या है, फिर दूसरे लाइन में उन्होंने परमात्मा के बारे में बोला कि सृष्टि के भगवान के रूप में आंशिक विस्तार में वही परम सत्य जो माया की भगवान की माया शक्ति उसको नियंत्रित करती है, उसको नियंत्रित करते हैं, और बाद में उनका व्यक्तिगत विस्तार के द्वारा परमात्मा रूप के द्वारा सभी को उनको नियंत्रण करते, सभी जीव को नियंत्रण करते हैं। और फिर तीसरे इसमें वो बोले कि नारायण नामक उनके जो व्यक्तित्व के एक अभिव्यक्ति के द्वारा वो पूरा इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जो आध्यात्मिक आकाश है उसमें वो उसका निर्माण करते हैं, और वही जो सर्वोच्च श्री कृष्ण भगवान है उनके चरणों को जो पूजा करने वाले हैं उनको वे प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण को कि वो कृपा करके जो उनका आपका चरणों का पूजा कर रहे हैं उनको एक शुद्ध प्रेम प्रदान करने की कृपा करे, तो इस प्रकार ये प्रार्थना कर रहे हैं वो। तो ये संक्षिप्त में हम इसका भी नाम देखेंगे नहीं, बट एक संक्षिप्त में उनके अलग अलग जो किताबें हैं जो को समझ अलग ग्रंथों की रचना की, तो जिसमें एक हरिनामामृत व्याकरण करके है इसके बारे में जस्ट एक बोलता हूँ 2 मिनट में। तो जैसे उन्होंने देखा कि जब अलग अलग ग्रंथों की रचना की तो देखा कि जो नए जो सीखने वाले जो विद्यार्थीगण हैं जो व्याकरण सीखना कोशिश करते संस्कृत का, वैसा हो सकता है कि वो संस्कृत के व्याकरण में यही भूल जाए कि भगवान की भक्ति क्या है और भगवान के नाम की महिमा उनको पता ना चले, तो इसलिए उन्होंने व्याकरण जो लिखा वो हरिनाम पे आधारित व्याकरण लिखा। तो जो व्याकरण का जब कोई पढ़ाई करेगा तो उससे वो भक्ति भक्ति में लग जाएगा, ऐसे इस प्रकार उन्होंने व्याकरण का रचना किया। तो ये अलग अलग किताबें हैं, फिर हम उसको आगे जाते हैं। तो अभी जस्ट इसका कक्षा का समारोह करने के लिए यह एक और एक प्रणाम मंत्र है जो भक्ति रत्नाकर में दिया गया है रूप गोस्वामी का। तो ये प्रणाम मंत्र के साथ हम इस कक्षा को विराम देंगे। तो सभी लोग हम तीन बार इसको एक बार दोहराएंगे, जैसे तीन बार दोहराएंगे तो हमको भी एक दिमाग में भी बैठ जाएगा और उनका अभिलाषा के ऊपर हम उनकी याचना करते हैं इसका उनका कृपा का। तो श्री रूप चरणम द्वंद्वन रागिनम व्रजवासिनम श्रीजीवम सततम वंदे मंदेशु आनंददायिनम श्री रूप चरण द्वंद रागिनम व्रजवासिनम श्रीजीवम सततम वंदे मंदेशु आनंददायिनम श्री रूप चरण द्वंद रागिनम व्रजवासिनम श्रीजीवम सततम वंदे मंदेशु आनंददायिनम। तो साधना दीपिका में भी इसको कोट किया है, तो उसमें उसका अनुवाद ऐसा है कि मैं श्री जीव गोस्वामी को बार बार विनम्र प्रणाम करता हूँ जिनका हृदय लगातार श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की ओर आकर्षित होता है। रागिनम स्वरूप चरणम द्वंद्वम रागिनम अनुरागी है चरणों के, उनके चरणों के, और जो व्रज के वासी है और अपने अकारण दया के कारण वह मंदबुद्धि लोगों को भी अकल्पनीय आनंद देते हैं। तो मंदबुद्धि लोग मतलब कौन के, जो आलसी है, जो भगवान के जो अलग अलग जो तत्व ज्ञान है उसको समझने में जिनका बुद्धि नहीं चलता है, तो ऐसे मंदबुद्धि लोग तो उनको भी वो अकल्पनीय आनंद प्रदान करते हैं। तो बस ये प्रार्थना हम करते हैं तो जैसे मेरे से मंदबुद्धि लोग को और आपके से सब लोग भक्तों को जीव गोस्वामी पाद कृपा करके भगवान की भक्ति का में हमको दृढ़ करें, यही हम प्रार्थना उनके चरणों में करते हैं। और एक आज एक वामन द्वादशी भी है, तो वामन द्वादशी का जस्ट एक पैरेलल बोलता हूँ इनके साथ, जीव गोस्वामी के साथ। जिस प्रकार वामन पैरेलल मतलब जिस प्रकार वामन देव जी अवतरित हुए थे, किस लिए अवतरित हुए थे कि उनको जो बलि का था, बलि को उनको ये करना था, बलि का जो उस टाइम पे सबसे बड़े खुद को सबके राजा पर जगत के निंदक समझते थे, तो उनका उन्होंने गर्व नाशन किया, गर्वहरण किया बोल सकते हैं, और उनको भक्ति में प्रस्थापित किया। तो वैसे ही जीव गोस्वामी जब उन्होंने उनके जो शास्त्र का ग्रंथों का रचना किया, उन्होंने जो अलग अलग जो लोग हैं जो शास्त्रों में सब अलग अलग मायादी शास्त्रों का अध्ययन करके जो गर्विष्ठ हो गए, उनका भी उन्होंने भी जीव गोस्वामी जब आविर्भाव हुए उन्होंने भी उनके ग्रंथों के द्वारा इन सभी लोगों को जो है शास्त्रों का प्रमाण दे के प्रस्थापित किया कि कैसे भगवान जो है परम सत्य जो है कृष्ण है, और उस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण की जो भक्ति है स्थापित कर दीजिए इस संसार में, और जो ऐसे लोग हैं उनका भी गर्विष्ठ हरण गर्व जो हरण कर दिए। तो इस प्रकार हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। कुछ अगर गलतियाँ होगा तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए गलतियाँ, क्योंकि जो और कुछ अच्छा रहेगा वो सब गुरुजनों का है, और जो कुछ गलतियाँ रहेगा कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। हरे हरे कृष्ण।